आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी हमारे बीच में विराजमान है। आप भी साकार मम्मा बाबा की पालना में पले हुए हैं। वर्तमान में आप ज्ञान सरोवर एकेडमी के डायरेक्टर हैं और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पूरे सर्कल और उसके आजू बाजू के देशों के भी आप डायरेक्टर हैं, विदेश के सेंटर्स के भी। और बहुत बार बाबा साकार और अव्यक्त मुरलियों में आपका नाम लेते हैं, तो मुझे अच्छी तरह याद है जी सिर्फ 2-3 साल पहले भी एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा डॉक्टर निर्मला दीदी के लिए कि मर्यादाओं में बहुत स्टिक हैं, तो बाबा ने कहा जी बैलेंस बहुत जरूरी है, लव और लॉ का बैलेंस है निर्मला दीदी का, जहाँ मर्यादाएं हैं तो वहाँ बहुत स्टिक है और जहाँ वात्सल्य है तो वो भी बहुत जबरदस्त है, जिसको बाबा लव और लॉ का बैलेंस कहते हैं। तो दीदी जी विदेश के और ज्ञान सरोवर अकेडमी दोनों के डायरेक्टर होने के नाते से बहुत अच्छी तरह से सारा कुशल संचालन कर रहे हैं। अपनी क्लास में मैं ये भी जरूर चाहूंगी कि दीदी जरूर बताएं कि विदेश की सेवाओं में विदेशी भाई बहनों की बाबा बहुत महिमा करते हैं मुरलियों के अंदर, कि उनके अंदर ज्यादा डेडिकेशन, वो सोचते नहीं हैं ज्यादा, तो इस तरह की जो विशेषताएं विदेशी भाई बहनों की बाबा बताते हैं तो थोड़ा कैसा वो सब ऐसी स्थिति को कैसे करते हैं, क्या उनके अंदर आप उनको ऐसे क्या पालना और संकल्प देते हो कि भगवान स्वयं मुरलियों में उनकी महिमा करते हैं, तो ऐसी कुछ बातें जो आप सबके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं, ऐसे ज्ञान रतन अभी हम लूटेंगे आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी से।
ओम शांत। गीत भी हो जाए तब तक बिंदी रूप स्टेज में रहो। सवेरे से अभ्यास करते हो बिंदी रूप स्टेज का? कौन किसने किया आज अमृत वेला में बिंदी स्टेज? ठीक है तो अभी उस स्टेज में बैठ जाओ, बस मैं और बाबा और कोई संकल्प नहीं। ओम शांति। अच्छी रीत से याद में बैठते हैं हा? और योग की बातें काफी समझी, खूब कमाई करके जा रहे हैं हा? क्योंकि योग द्वारा हमारी अविनाशी कमाई, तो जितना योग के बारे में समझेंगे नेचुरली है हमारा गहरा योग लग सकता है। हवा हल्का पंखा चलाना पड़ेगा, मक्खियां आती है, या तो ये दरवाजा बंद कर दे, मक्खियां आती है। तो जितना योग को समझेंगे और अभ्यास करेंगे नेचुरली है, फायदा ही फायदा है। तो आज मुझे मम्मा बाबा के बारे में पूछा कि मम्मा बाबा का क्या अभ्यास होता था, कैसे वो बिंदी स्टेज उन्होंने अपने जीवन में अपनाई थी। क्योंकि आज सवेरे से आपके क्लास बिंदी स्टेज पर हो रहे हैं, शाम को भी वही होने वाला है, तो मम्मा बाबा ने कैसे योग अभ्यास करते थे, तो पहले मैं ब्रह्मा बाबा के बारे में बताएंगे कि ब्रह्मा बाबा जो प्रवचन देता था, आपको मालूम होगा हिस्ट्री कि जब पहले बनारस में गए तब क्या करते थे, मैं आत्मा हूं ऐसे दीवार पर लिखते रहते थे। तो समझो 1936 से न सिर्फ लिखते थे परंतु उसका अभ्यास उन्होंने पक्का किया, और इसलिए अभी भी क्या करते हैं, रोज मुरली में याद दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, देह भान छोड़ो, देह के संबंधियों को भूलो और गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, क्योंकि दुनिया वालों को हम चैलेंज करते हैं, खास विशेष सन्यासियों को, कि आप लोग तो घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं पवित्र रहने के लिए, हम तो घर बार में रहकर सब कुछ छोड़ते हैं। तो इसलिए ये देखना है कि हमारा मुंह सबसे टूटा हुआ हो। और ब्रह्मा बाबा बिल्कुल नष्ट मोहा थे, क्योंकि भल साथ में रहते थे, क्योंकि यशोदा उनकी युगल और उनका परिवार, दो बच्चे, वह बहू, बच्चियां सब एक ही घर में रहते थे। जब भी समझो शुरू से बाकी सबके अलग अलग मकान थे, परंतु ब्रह्मा बाबा अपने परिवार सहित रहता था। और यज्ञ में 300-400 लोग थे। अब उनके साथ में रहकर भी उनका व्यवहार अपने परिवार से, अपनी लौकिक बच्ची से या अन्य बी के बहनों से बिल्कुल अलग नहीं रहा। कोई भी नहीं समझता था कि ये ब्रह्मा बाबा निर्मल शांता दादी को ज्यादा प्यार करता है या उसको ज्यादा फेवर करता है। इतने तक कि जसोदा जो उनकी युगल थी उसको मम्मा का पोजीशन नहीं दिया, मम्मा को दिया। और जब नारायण यज्ञ छोड़ के जा रहा था, उनका लड़का, बाबा ने उसको सिर्फ आप उसे अहमदाबाद की टिकट का पैसा दिया और कुछ नहीं, बंबई तक का पैसा भी नहीं दिया। कहा कि जब उन्होंने अपना ट्रस्ट बनाया, सब कुछ यज्ञ को दे दिया, और ट्रस्ट बनाने के पहले सारे परिवार को पूछा कि क्या मैं ये दे सकता हूँ, मेरा विचार है ट्रस्ट को दे दूं, और कमाया था खुद, तो इसलिए बच्चों ने भी कहा भले बाबा दे दो। तो फिर न खुद का कुछ रहा न बच्चों का कुछ रहा। बाकी कई है जिन्होंने यज्ञ छोड़ा, वो अपना जो लाए थे वो लेके गए, कहा बाबा हम ये गहने लाए थे हमको दे दो। और बाबा की परखने की शक्ति इतनी तेज थी, उनको मालूम था कि कौन है कभी भी वापस ले सकता है। तो उन्होंने बाकी के कईयों के जेवरात वगैरह बेच दिए, परंतु उन्होंने का नहीं बेचा जिसका उनको डाउट था कि कभी भी यज्ञ छोड़ के जाए। और जब उन्होंने मांगा दे दिया, पर अपने लड़के को सिर्फ 5 रुपया दिया अहमदाबाद की टिकट का। ये नष्ट मोह। और फिर बाबा क्या है कि सदैव अभ्यास अपना करते रहते थे, ज्ञान का मनन मंथन करते रहते थे। उन दिनों में 1968 तक संगठन में योग नहीं चलता था, सब अपने अपने कमरे में योग करते थे। तो मम्मा जाकर छत पर योग करती थी या खुले में जाकर योग करती थी, चांदनी में योग करती थी। तो मम्मा तो सवेरे 2-2.5 बजे उठकर योग करती थी पहले। तो बाबा भी योग करता था और योग के बाद मुरली के लिए ज्ञान मनन करता था और किसी से बात नहीं करता था। कहता था कि ये समय है मुझे बच्चों के लिए ज्ञान ग्रास तैयार करना है, मनन मंथन करके उनके लिए माल तैयार करना है। तो इसलिए समझो बहुत नष्टो मोहा तो थे, उपराम भी थे, क्योंकि ये सब अवस्था हमको चाहिए तब हम ऊंची योग की स्थिति पर पहुंच सकते हैं। तो उपराम बहुत रहते थे, सब ऑब्जर्व करते थे, साक्षी बनकर सब देखते थे, परंतु उपराम रहते थे, शिक्षा भी देते थे, परख भी बहुत, परखने की शक्ति भी बहुत थी। चित्त के जितना हमारा योग का पावर है परख सकते हैं। तो समझो कोई भी व्यक्ति को देखकर 5 मिनट में ब्रह्मा बाबा उनका आदि मध्य अंत सुना सकते थे। कई बार क्या है कि कई बहने हैं अपने जिज्ञासु को लाती थी तो समझती थी, क्योंकि जिज्ञासु शुरू शुरू में तो बहुत सर्विसेबल होते हैं ना, तो बहने समझती थी कि तो मैं बहुत सर्विसेबल भाई या बहन को लाई हूँ, परंतु वो प्रशंसा भी करती थी बाबा के सामने उनकी, पर बाबा समझ जाता था ये ज्ञान में चलेगा या नहीं। तो शुरू शुरू में बाबा के सर्विस का बहुत शौक था, मनन मंथन भी करते थे, और जैसे मुरली में आप देखते हैं सर्विस के लिए डायरेक्शन देते रहते थे, और कोई भी सर्विस करके आता था बहुत गहराई से सवाल पूछते थे, क्या हुआ, क्या प्रश्न पूछा आपने, क्या जवाब दिया। परंतु अंत में उससे भी उपराम हो गए, अर्थात यदि कोई सर्विस का समाचार सुनता था तो 10-15 मिनट उसने सुना लिया, और जैसे बाबा ने नहीं सुना, पूछे थे क्या सुनाया बच्ची, इतने उपराम हो गए थे कि फिर उसमें कुछ उनका इंटरेस्ट नहीं था। और 60 साल की आयु में तो ज्ञान में आए थे, सब कुछ किया था जीवन में, तो वैराग्य तो था ही। तो बाबा सब तरफ अटेंशन देते थे, क्योंकि कारोबार भी तो करते थे, सबसे मिलना जुलना, बातचीत करना, किचन में जाना, देखना जब सब्जियां काट रहे हैं, कभी अनाज साफ कर रहे हैं, सब देखना, कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो देखना, और पत्र लिखना पढ़ना सब काम करते थे। परंतु बाबा की कर्मयोगी स्टेज थी, और जब भी किसी से मिलते थे कुछ ज्ञान के पॉइंट सुनाते थे। तो क्या होता था, ज्ञान का अपना मनन मंथन जो मुरली का किया वो सुना देते थे उन्हों को। तो नेचुरली है कि सभी का ध्यान जाता था ज्ञान में। और आपको मालूम है, आप जब मुरली सुनते हैं तो फील करते हैं कि बाबा क्या है, ब्रह्मा बाबा के लिए क्या बोलते हैं, ये कभी मैंने बोला है ना मुरली में, ब्रह्मा बाबा अपने लिए कभी मैंने बोला, सदैव ये बोलते हैं। तो क्या है कि बाबा ने जैसे अपने को, जैसे बाबा हम तो कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, या आपने ये टॉपिक भी किया होगा ना, बेफिक्र बादशाह या बेगर टू प्रिंस, बाबा कई बार कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर भी मेरा कुछ नहीं है, ये भी शिव बाबा को लोन में दे दिया है, तो उनका बोलना भी मैं कभी नहीं, बाबा बाबा हमेशा कहते थे, और अपने लिए ये गांव का छोरा था ये कहता था, मैं नहीं। तो बिल्कुल जैसे कि मेरा पन छूट गया था। तो समझो ये हमारी जितनी ऐसी स्टेज होंगी ना, तो क्या होगा कि धीरे धीरे पहले देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना होता है, फिर चलते फिरते फरिश्तापन का अभ्यास करना होता है, और ये लास्ट में है बिंदी स्टेज कि बस कोई संकल्प नहीं, आंख खुली है कुछ देखते नहीं, किसी की बात का इंटरेस्ट नहीं सुनने का, और जब मुख से बोलेंगे ज्ञान रत्न काम की बातें, इधर उधर की बातें नहीं। तो समझो सारे दिन का जब भी हम ये अभ्यास करते हैं, तब जब हम योग में बैठेंगे, सिर्फ बोलना भी नहीं है कि मैं आत्मा बिंदु हूं, आत्मा भान में रहकर परमात्मा की याद में लीन हो जाना है। तो उसके लिए भगवान के लिए भी तो इतना प्यार होना चाहिए ना हमारा। जब याद प्यार होगा तो लगन में मगन होंगे, नहीं तो क्या होगा, इधर उधर की बातें याद आएंगी, जिससे प्यार है जिस बातों में इंटरेस्ट है उधर उधर की बातें याद आएंगी, क्योंकि हम लोगों को नहीं तो काम 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 करने की बहुत ख्याल रहता है ना, ये करना है वो करना है, टीचर्स बहनों को भी ये ख्याल रहता है, ये सर्विस करनी है, ये जहाँ जाना है वहाँ जाना है, इसको फोन करना है, इसको ये काम देना है, तो क्या है कि हम ज्यादा काम कॉन्शियस हो जाते हैं, रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, जो पार्ट बजाना है। परंतु जितना हम देही अभिमानी रहने का अभ्यास करते जाएंगे, उतना वो लास्ट स्टेज है निसंकल्प स्टेज, उसमें हम लीन हो सकते हैं। अब बाबा तो ज्ञान में आए तब उनकी उम्र 60 वर्ष हो गई थी, और मम्मा आई तो 16 साल की कुमारी थी, परंतु कुमारी होते हुए और ज्ञान में भी बाद में आई, पहले कई दादियां पहले आ गई थी ज्ञान में उनसे, मम्मा की माँ मौसी सब उनके पहले ज्ञान में आए, परंतु मम्मा की जो धारणा थी, ज्ञान का मनन मंथन करने का जो संस्कार थे, वो इतने तेज थे जो बाबा ने उनको मम्मा का टाइटल दिया। तो कुमारी होते भी माँ का पार्ट बजाया, ज्ञान की यही विशेषता है ना, माताओं को बाबा कहते हो कहते हैं आप अधर कुमारी हो, और कुमारियों को कहते हैं आप जगत की माँ हो, जगदम्बा हो। तो मम्मा ने ये प्रैक्टिकल में करके दिखाया, माँ का स्वरूप बन के दिखाया, और ज्ञान की बहुत गहराई में जाती थी। उसने जो भी अपने जीवन में हासिल किया ज्ञान की गहराई में जाके, तो वैराग्य लाना भी उनको ज्ञान से, कि बाबा हमें ऐसी सत्युगी दुनिया की बादशाही दे रहे हैं, तो ये कलयुगी हमें क्या चाहिए। उस आधार से उन्होंने सब कुछ छोड़ा। तो मम्मा का संस्कार ही ये था अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होने के कारण कम बोलना। मम्मा बहुत कम बोलती थी और मम्मा का टाइटल मिला तो उनको ऐसा अपने पोजीशन में रहना पड़ता था। क्या है कि दूसरी बहनें तो बाबा की बेटी बनकर बाबा से बहुत रूहान करती थी, बाबा से मांग भी करती थी सब दादियां कि आज हमको आपके पास आना है, आपके पास रहना है आदि आदि। पर मम्मा कभी बाबा के पास बुलाए बिगर नहीं जाती थी। जब बाबा कुछ काम से बुलाते थे तो बाबा के पास जाती थी, परंतु मम्मा को इंटरेस्ट बहुत था बाबा की बातें सुनने का। तो मम्मा क्या करती थी, रोज रात को ब्रिजेंद्रा दादी को फोन करती थी। वो सखी थी जैसे ब्रिजेंद्रा दादी, बाबा की लौकिक बहू, बड़ी बहू थी ना, वो मम्मा की सखी थी और वो ब्रह्मा बाबा के साथ सारा दिन रहती थी। तो सारा दिन देखती थी कौन आया, किसने क्या बातचीत की, तो मम्मा फिर सारा पूछती थी आज बाबा किससे मिले, क्या ज्ञान की चर्चा की, ये वो उसमें घंटों तक फोन पर बात करती रहती थी। और मम्मा की संजो 2 बजे उठती थी, एकांत में जाकर छत पर बैठती थी या चांदनी, जब भी फ्री टाइम हो गया वो योग में बैठ जाती थी। और योग में उनकी इतनी गहरी अनुभूति होती थी या उनके चेहरे पर इतनी चमक होती थी जो सबको न सिर्फ आकर्षित करती थी परंतु कईयों को मम्मा से साक्षात्कार होता था। जगदम्बा या अपनी जो भी इष्ट देवी है उसका साक्षात्कार होता था। और उनकी संजो प्रतिभा से, उनके उससे कई लोग हैं, कई माताएं अपने पति को जो ज्ञान में नहीं होते थे उनको ले आती थी और मम्मा की मिलने से वो पति लोग भी कोर्स करना शुरू करते थे, ज्ञान में चलना शुरू किया और कई माताओं का बंधन टूट गया। और कई ऑपोजिशन करने वाले, क्योंकि पंजाब में तो शुरू शुरू में बहुत ऑपोजिशन हुआ ज्ञान का, ब्रह्मा कुमारियों का। और मम्मा अमृतसर में वगैरह में रहती थी तो कई हल्ला करने आते थे, मम्मा को मिलकर एकदम शांत हो जाते थे, कोई बोल नहीं सकते थे। अपना जो विरोध करने आते थे एक शब्द भी विरोध का नहीं बोलते थे। तो ये उनकी प्रतिभा थी। और न मम्मा खुद सवेरे उठती थी 2 बजे में, परंतु कई बार चक्कर लगाने जाती थी या पूछती थी आज आप लोग अमृत वेले उठे। यदि कोई दादियां कहती थी कि ना आज तो हमको थोड़ा सुस्ती आ गई या हमको आदत नहीं है, हम कैसे जल्दी उठे, तो मम्मा कहती थी देखो मंदिर में भक्त लोग 4 बजे आपकी पूजा करते, घंट बजाते हैं और आप देवियां सोई पड़ी है, अच्छा लगता है क्या? तो समझो जब ऐसी बातें सुनती थी बहने तो नेचुरली है कि उनको भी फिर अमृत वेले उठने का बहुत उमंग उल्लास रहता था और कभी अमृत वेला मिस नहीं करते थे। मम्मा बम्बई में थी एक दिन तो रात को 12 बजे तक कोई मिनिस्टर को मिलने में उनका टाइम चला गया, तो सवेरे फिर भी अपने नियम अनुसार 2:30 बजे उठ गई। रमेश भाई के घर में रहती थी। रमेश भाई ने पूछा, मामा आप इतना देरी से सोई और इतना आपने 2:30 बजे उठ भी गई? तो मामा ने कहा, देखो मिनिस्टर को मिलने के लिए मैं जाग सकती हूँ, तो क्या मेरे पीयू को मिलने के लिए अमृत वेला नहीं उठ सकती हूँ? वो तो हमारा अपने पीयू को मिलने का टाइम है, कैसे मिस कर सकती हूँ? तो जैसे कभी ना मुरली मिस की, ना कभी अपना अमृत वेला मिस किया, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मा और ब्रह्मा बाबा की जो योग की अवस्था थी, तो जैसे कहते हैं ना योगी के अंग अंग शीतल होते हैं, तो जो भी ब्रह्मा बाबा का हाथ पकड़ता था जैसे इतना सॉफ्ट रुई जैसा सॉफ्ट लगता था। और कई हैं तो इसको हाथ पकड़ने से ही करंट लगता था, और कईयों को ये अनुभव होता था जब ब्रह्मा बाबा योग कराते हैं तो जैसे मस्तिष्क में लाइट का गोला। तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने इतना पुरुषार्थ किया जो उस स्टेज में ठहर सकते थे। जैसे मम्मा भी जब भी चलती फिरती थी जैसे लगता था फरिश्ता, चलते फिरते कोई बात नहीं करना। और जैसे योग में तो एक बार है वो बम्बई में जब रमेश भाई के घर रहती थी और सेंटर हमारा रमेश भाई के घर से करीब 20 मिनट की ड्राइव पर था। उन दिनों में तो इतनी ट्रैफिक नहीं थी, अभी तो वहां से रमेश भाई के घर से कोलाबा जाओ 1.5 घंटा लग जाता है। उन दिनों में समझो फिर भी 20-25 मिनट लगते होंगे ड्राइव करने को, परंतु ड्राइव करते करते भी मम्मा योग में मगन रहती थी और इधर उधर देखना नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट नई उन दिनों में निकली थी कि कोको कोला की बॉटल है उसमें से ऑटोमेटिक कोको कोला फ्लूइड है ग्लास में जाता था और ग्लास भर जाता था, घड़ी घड़ी ऐसे होता था। तो रमेश भाई को तो एडवर्टाइज बहुत अच्छी लगी, तो रमेश भाई ने मामा को पूछा, वो चली गई एडवर्टाइज पीछे, मामा को पूछा, मामा ये एडवर्टाइज देखी आपने? तो मामा कहे कि मैं तो अपने बाबा की याद में मगन थी, मैंने तो यहाँ वहाँ कुछ नहीं देखा। जैसे बाबा को भी जब हम कहते थे ना, बाबा बम्बई आओ आओ, कहते हैं क्या है बम्बई में, बंदर ही है ना, जहाँ तहाँ शहरों में बंदर ही है ना, मतलब घूमने जाने का बिल्कुल शौक नहीं था, क्योंकि ये तो कांटों का जंगल है, बंदरों की दुनिया है, क्या करना है। तो क्या है कि ऐसे जैसे कि दोनों को अपना जो ज्ञान युक्त स्टेज है, योग युक्त स्टेज है, उसमें सदैव स्थित रहते थे। और इस कारण क्या है कि मम्मा की धारणा भी इतनी अच्छी होती थी और धारणा के कारण मम्मा जो ज्ञान सुनाती थी सबके दिल को स्पर्श करता था। तो इसलिए हमें मेन अभी ये लक्ष्य रखना है कि हमारी बुद्धि है न व्यक्तियों में जाए न पदार्थों में जाए, क्योंकि क्या है कि अभी साइंस के साधन सब बढ़ते जाते हैं, सब रिफाइन होते जाते हैं, चाहे फोन देखो चाहे टेलीविजन देखो चाहे कंप्यूटर देखो, लैपटॉप है आईपैड है सब का, आजकल तो मोबाइल फोन में भी कई काम हो जाते हैं। तो इसलिए देखना है कि हमारा कोई भी चीज में आकर्षण ना हो, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए ये बुद्धि में ना हो, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि बुद्धि जाती है हमको ये चाहिए कि हमारे पास भी ये हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं साधनों को इस्तेमाल करो परंतु उसमें न मोह हो न आकर्षण हो न प्रभावित हो न इच्छा, ये भी सूक्ष्म विकार है। इसलिए हमको देखना है कि हमारे पास सुविधा है साधन है यूज करें, नहीं है तो उसका हमें अफसोस ना हो कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे फलाने के पास है मेरे पास नहीं है, ये ना हो। तो जब ऐसा समझो हम वैरागी बन जाएंगे और निर्विकारी बन जाएंगे तो नेचुरली है योग हमारा सहज हो जाएंगे। परंतु योग के लिए हमें सदैव अटेंशन रखना पड़ता है क्योंकि मन चंचल है, सारी जीवन मन को क्या दे दिया है हमने परमिशन, जहां जाना है जाओ, अभी मन को रोकने का प्रयत्न करते हैं तो क्या है मन भी इतना जल्दी एकाग्र नहीं होता है। तो इसलिए ये देखना है कि हमें अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखना है, चेकिंग करते जाना है, रात को अपना चार्ट लिखना है कि कैसे रहा। और यहाँ तो आप आए हो विशेष योग भट्टी के लिए, तो इसलिए जितना मौन में रहकर अपने को योग में रखेंगे, हम तो कईयों को ऐसे भी कहते हैं कि अभी आपको यहाँ मोबाइल फोन बंद, यहाँ के किस किस ने ये मोबाइल फोन बंद किया है, आधों ने, आधों के पास फिर भी मोबाइल है। तो हम कहते योग भट्टी करो, अपना मोबाइल सारा समय, सिर्फ यहाँ बैठते हो तब नहीं, हाँ सारा चार पांच दिन मोबाइल फोन बंद, किसी से भी संपर्क नहीं, तो मोबाइल फोन भी बंद, अपने खाने पीने पर भी लक्ष्य रख ध्यान रखना है कि इतना ना खाए जो योग में चुटकाए, और उसके साथ साथ सारा दिन मुरली का मनन मंथन और बाबा की संबंध में मग्न हो जाए, प्यार में मग्न हो जाए। क्योंकि देखो आज हमारे सामने कई भक्तों का मिसाल है कि भक्त है जो मीरा ने जहर का प्यारा पिया, राणा को त्याग किया, अपने राजाई को त्याग किया, इतनी लगन थी तब ना। ऐसे ही हिस्ट्री में देखते हैं कि नरसिंह, हम गुजरात में भक्त नरसिंह हो गया, वो इतना मस्ती में सारा भगवान की मस्ती में गाता था, नाचता था, जो मसाल हाथ में थी, हाथ जल गया तो भी मालूम नहीं पड़ा। गोरा कुंभार करके कुंभार था, वो भी योग करते करते, भक्ति करते करते अपने मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसका ध्यान भी नहीं गया, अपना बच्चा ही उसमें पिस गया। ऐसी ऐसी स्टोरीज है कि भक्त इतने भक्ति में लीन हो जाते हैं, और हमें तो बाबा मिला, अविनाशी खजाना मिला, तो कितना प्यार से ऐसे बाबा को याद करना चाहिए। तो जैसे जैसे अभ्यास करते करते आत्मा अभिमानी से फरिश्ता और फरिश्ता से बिंदी, तो ये अभ्यास करना, स्पेशली जब हम बैठते हैं योग में, तो ये देखना है कि हम कोई संकल्प न करें, बाबा की याद में मस्त हो जाएं। तो इसलिए क्या है कि जब अनुभूति होती है, तो अनुभूति होने से क्या होगा, हमारा निश्चय भी पक्का होगा और हम उस मार्ग पर फिर तेज पुरुषार्थ से चल सकते हैं। तो अभी अभी बिंदु बहन ने बोला कि थोड़ा कुछ एशिया ऑस्ट्रेलिया का भी समाचार देवे, तो क्या है कि आप जानते होंगे विदेश की लाइफ कैसी होती है। वहाँ 16 वर्ष के भी बच्चों के उन्होंने सर्वे किया है, तो 16 साल के बच्चों में से भी 80% बच्चों ने धूम्रपान का प्रयोग किया है, मदिरा पान का प्रयोग किया है, हर एक ड्रग्स का प्रयोग किया है, 80%, क्योंकि वहाँ जो माँ बाप पॉकेट मनी देते हैं, तो फिर जेब में पैसे हैं तो बच्चे फिर क्या भी करेंगे। और संगम के रंग में, क्योंकि कोई मित्र है वो कुछ ड्रग लेता है तो क्या कहेगा, थोड़ा ट्राई करो, इसमें बहुत मजा है, तो सब ड्रग्स लेने में सब ने किया था। मेजोरिटी है ज्ञान में आने के पहले कुमार कुमारी थे, परंतु वहां तो सेक्स की छुट्टी होती है, किसी भी किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में शादी के पहले भी समझो संबंध रखते हैं, शारीरिक संबंध। तो और वेजिटेरियन खाना तो कभी उन्होंने ज्ञान में आने के पहले खाया नहीं था, वंस इन अ व्हाइल कभी कुछ टेस्ट किया हो तो, नहीं तो नॉन वेज ही खाने वाले थे। परंतु विदेश की ये विशेषता है, भारत में क्या है, परिवार का सामना करना पड़ता है, आप कुछ भी चेंज लाएंगे परिवार का सामना करना पड़ेगा ना पहले, फिर समाज का सामना करना पड़ता है। वहाँ एक बात अच्छी है कि परिवार वाले कुछ फोर्स नहीं करते, समाज वाले कुछ देखते नहीं, कौन क्या करता है, किसके साथ घूमता है, किसके साथ खाता है पीता है, कुछ नहीं, क्या करता है कुछ नहीं, जिसको जो करना है करते रहे। परंतु ऐसी लाइफ को छोड़कर हमारी ब्रह्मा कुमारी लाइफ को अडॉप्ट करना सहज तो नहीं है, परंतु उन्होंने ये विशेषता एक बार निश्चय किया करना है, माना करना है, छोड़ना नहीं। तो वो क्या करते हैं, ज्ञान में आए, एक भाई था कोर्स करने आता था, कोर्स करने 10 बजे आता था, उठता था 9 बजे, उठकर 10 बजे कोर्स करने पहुंच जाता। 7 दिन का कोर्स किया, पीछे पूछा अब क्या, हमने कहा अब हमारा क्लास 5:30 बजे होता है, मुरली का क्लास रहा ऑस्ट्रेलिया में, 5:30 बजे योग, 6 बजे मुरली, अभी भी मेजोरिटी स्थानों पर 5:30 योग, 6 बजे मुरली, न्यूजीलैंड में तो 6 बजे मुरली पूरी हो जाती है, फिजी न्यूजीलैंड में, क्योंकि सबको फिर काम पर जाना होता है, काफी लोग हैं उनका, समझो फ्रूट शॉप होती है या खेडू है, तो नेचुरली जल्दी जल्दी काम पर जाना होता है। तो मैंने कहा 5:30 हमारा क्लास होता है, हमारे तो आओ। 8वें दिन से 5:30 जाना शुरू कर दिया, और जैसे समझा कि अभी वेजिटेरियन खाना खाना है तो नॉनवेज छोड़ दिया। लंदन में एक भाई था, एक मास हुआ होगा उसको ज्ञान में, तो मैंने पूछा तुम रेस्टोरेंट में जाते हो कभी खाना खाने, कहता है बहन जी कैसे हम बात करते हो, कैसे मैं जाऊंगा रेस्टोरेंट में, कैसा वाइब्रेशन होता है। तो जो कभी खाना न पकाते थे न वेजिटेरियन खाते थे, उन्होंने वेजिटेरियन खाना पकाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में बड़ी दादी ऑस्ट्रेलिया गई थी 77 में, तो भाइयों ने खाना पकाया, कहा दादी चलो ब्रह्मा भोजन खाने। दादी गई किचन में, देखा तो बॉयल मूंग बीन बनाया था, चावल बनाया था, सलाद बनाया था, और कहा ये ब्रह्मा भोजन। तो दादी जी ने छौंक लगाया मूंग को, मसाला डाला और खाना खाया। क्या है कि शुरू में ऐसे करते थे, फिर 1-2 साल में तो उन्हें गुलाब जामुन जलेबी सब सीख लिया भाई लोगों ने, क्योंकि शुरू शुरू में भाई लोग हमारे सेंटर चलाते थे, तो 1 मास में सब सीख लिया। 1 साल में यहाँ आवे, मधुबन में आवे तो टोली डिपार्टमेंट में जावे और आतम भाई को देखेंगे क्या टोली बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, टोली की रेसिपी लेंगे और बनाना शुरू कर दिया। और हर एक के किचन में देखो ना 8-10 कुक बुक होंगी, कुक बुक खोली उसमें क्या क्या है वो देखा और बनाया। तो अभी तो क्या है, कई प्रकार के बिस्किट है, केक है, सब कुछ बनाना सीख गया। तो वेजिटेरियन खाना भी सीखा बनाना। तो क्या होता है कि विदेश में तो क्या है, पास्ता भी बनाएंगे तो नूडल भी बनाएंगे, मतलब इटालियन डिश भी बनाएंगे तो चाइनीज डिश भी बनाएंगे तो इंडियन डिश भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। तो क्या है कि खाना पकाना ये अमृत वेले भी सब आएंगे क्लास में, उसमें भी एशिया में क्या है, मलेशिया में और इवन ऑस्ट्रेलिया में शुरू शुरू में क्या हुआ कि सेंटर के आसपास सभी ने अपना मकान लिया। उन दिनों में तो बहुत सहज होता था ना, एक मकान छोड़ा दूसरा लिया, यहाँ की तरह नहीं है कि मकान खरीदना है, नहीं तो यहाँ तो क्या होता है बाप दादा से एक ही मकान में रहते हैं, वो एक ही व्यापार या एक ही धंधा करते हैं जो बाप दादा करते आए, एक ही मकान में रहना है। वहाँ तो समझो फ्लैट लेना इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा समझो खर्चा होता है, बॉन्ड देना पड़ता है ये वो, परंतु जैसे भी सेंटर ज्ञान में आए, सेंटर के आसपास शक्ति भवन पांडव भवन बनाया, अपना मकान बनाया, या परिवार वालों ने भी कईयों ने नजदीक नजदीक मकान ले लिया है, फिर रोज सवेरे अमृत वेला आएंगे। तो मलेशिया में अभी भी रोज सवेरे 25-30 अमृत वेले के लिए आ जाएंगे, और फिर अमृत वेले के बाद वहीं रहेंगे, क्योंकि 4:45 अमृत वेला पूरा होगा, 5:30 बजे योग शुरू हो जाता है, तो वहीं चाय पानी पी के कुछ स्टडी करेंगे, कुछ कर्म योग करेंगे। तो क्या है कि अमृत वेले का महत्व, और मुरली में भी ऐसे नहीं, इंडिया में हमने देखा 7 बजे मुरली शुरू होती है तो 7:05 काम को आएंगे, 7:05 को आएंगे, 7:15 को आएंगे, 7:30 तक आते रहेंगे, 8:15 उठकर चले जाएंगे। तो जैसे मंदिर में जाते थे ना दर्शन करने, ऐसे पहुंच जाते हैं, दर्शन कर लिया, काम पूरा हुआ नहीं। वहाँ आप देखेंगे 6 बजे मुरली शुरू होती है, उसके पहले सब क्लास में आ जाएंगे। तो क्या है कि पढ़ाई का शौक है, योग का शौक है, और नियमों पर भी पक्का चलना है। तो इस कारण क्या है कि सेवा में भी शौक है, कि जैसे भी ज्ञान मिला सोचते हैं हम अपने मित्र संबंधी को लावे ज्ञान में। विशेष विदेश में क्या है, एशिया में फिर भी परिवार के ऊपर वो होता है कि परिवार साथ में आता है, वहाँ क्या है विदेश में परिवार के साथ इतना अच्छा संबंध नहीं, फ्रेंड्स के साथ अच्छा संबंध। तो एक फ्रेंड आएगा, अपने अनेक फ्रेंड को ले आएगा, तो एक दो की बात सुनकर, एक दो का अनुभव सुनकर आकर्षित करते हैं बाबा के पास। और नेचुरली है कलयुगी, वहाँ बाहर का वातावरण और सेंटर का वातावरण में कितना फर्क होता है। तो ये समझो वातावरण से, वाइब्रेशन से उनको बहुत खींच होती है। वहाँ जो समझो विदेशी ज्ञान में आते हैं सेंटर के वाइब्रेशन के खींच के आते हैं, क्योंकि बाहर में कोई प्यार नहीं मिलता है उनको। माँ बाप भी ऐसे होते हैं, नौकरी धंधे में बिजी होते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते हैं बच्चों को। तो ईश्वरीय प्यार है और शांति का जो सेंटर का वातावरण है वो उनको फौरन खींचता है, और इस कारण फिर चल पड़ते हैं। और चल पड़ते हैं माना करना है तो सब कुछ करना है, नहीं करना है तो कुछ नहीं करेंगे। ये उनका झटकू जैसे है ना, झटकू करना है, सब कुछ करना है और सब एक साथ करना है। तो इसके कारण क्या है कि वहाँ इतना भ्रष्टाचार दुराचार इतना नहीं है जितना भारत में है ना। और भारत में तो जैसे अपनी शान दिखाने के लिए क्या करेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठ झूठ तो ऐसे बोलते हैं जैसे कुछ नहीं परंतु वहाँ ये है ऑनेस्टी। इसलिए बाबा कहते हैं विदेशी ऑनेस्ट होते हैं, और उनको बाबा से बहुत प्यार। और इस कारण क्या है कि हर साल अपने को बहुत तैयार करके यहाँ से जाते हैं, अपनी बचत करने लगते हैं कि हमको नेक्स्ट ईयर फिर मधुबन जाना है। खर्चा तो होता है ना वहाँ का, इतना ही खर्च होता है, काफी खर्च होता है, परंतु ये लक्ष्य रखते हैं कि हमको वापस जाना है नेक्स्ट ईयर, तो पहले दिन से बचत करना शुरू कर देते हैं। तो इस कारण देखा है कि जैसे जैसे सेवा का भी शौक है, और जैसे बाबा कहते हैं ना, वहाँ के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, थोड़ा बुद्धिमान भी होते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, सब प्लानिंग करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। तो हर एक में सर्विस का शौक, प्लानिंग का शौक, बाबा का प्यार, इस कारण क्या है, मुरली से प्यार, तो इस कारण जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे बाबा मेनली उनकी प्रशंसा करते हैं कि फॉरेन उनों के लिए तो विदेश ही माना, कल्चर अलग, भाषा अलग, धर्म अलग, सब कुछ अलग है, परंतु अलग होते हुए भी बाप को पहचाना और बाप से पूरा वर्षा लेने का ये उन्हों को लक्ष्य रहता है। अच्छा, तो अभी हम 5 मिनट बाबा की याद में फिर से बिंदी स्वरूप में बैठेंगे, क्योंकि आज का जो लक्ष्य है सारा दिन यही अभ्यास करना है, अपने को बिंदी समझ, बिंदी बाप को याद करना।
ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो, ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, मीठी बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो, ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो।
ओम शांति। तो अभी सभी ने बहुत अच्छा बिंदु रूप स्थिति का भी क्लास किया, और विदेश घूम के भी आए, घूम के आए सभी। तो दीदी का हम एक हाथ की ताली से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, दीदी ज्ञान सरोवर से विशेष हमारा क्लास लेने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है। ओम शांति।